क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी जाने माने लेखक से, कवि से, साहित्यकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहें। आज हमारे लिए खुशी का अवसर है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व हिंदी परिषद द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को लेकर के उनकी 115वीं जयंती पर आयोजित किया गया है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी के पौत्र, जिनके साथ हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, आपका हार्दिक स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए कुछ अपने दादाजी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
नमस्कार कल्पना जी, और ऐसा है कि दादाजी को जब स्मरण करता हूँ तो बहुत सी स्मृतियाँ हौच पौच हो जाती हैं कई बार, और फिर समझ में नहीं आता कि मैं दरअसल इस पक्ष को रखूँ या उस पक्ष को रखूँ। और तो लगता है कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के साथ कुछ ऐसा बहुआयामी घटता ही होगा सामान्यतः
जी।
तो मुझे स्मरण है कि अब जैसे उनके ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, इकबाल का वो शेर याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
बहुत खूब।
तो ऐसा ही कुछ है उनका पक्ष। अब मुझे बचपन की कुछ यादें हैं, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था और तब वो बच्चों के साथ हिले मिले रहते थे और कहते थे कि अच्छा ये कविता याद करके सुनाओ तो मैं 25 पैसे दूंगा या 10 पैसे दूंगा
जी।
उस समय 10 पैसे का की भी बड़े का भी बड़ा मूल्य था, और या कहते थे कि रसगुल्ला खिलाऊंगा,
जैसे बच्चों को बहलाते हैं
जी। तो उसी दौरान मैंने उनकी कुछ कविताएं इसमें याद की थी, और हालांकि वो कविता जो है बहुत मैच्योर कविता है, बहुत प्रौढ़ कविता है, और मेरी समझ में तो क्या खाकी आई होगी उस समय, अभी तक समझ जाऊं तो बड़ी बात है। नीलकुसुम, तो मैंने नीलकुसुम याद कर ली थी और मैं उसका पाठ करता था, तो उन्होंने बहुत खुश होकर हम लोगों को मिठाई खिलाई थी
जी।
ये चीज़ें मुझे स्मरण आती हैं। और उसकी पंक्तियाँ हैं, है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे
जी। बहुत सुंदर।
जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे। तो ये कविता लंबी है, और अंत में है उसकी जो अंतिम पंक्तियाँ हैं कि ओ जहाँ कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले आऊँगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूँ, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊँगा।
बहुत खूब। इसके अतिरिक्त आपको अपने बचपन की और कोई ऐसी बात याद है जो कोई विशेष जो है उनके बारे में, दिनकर जी के बारे में आप कह सकते हो?
अब वो उस समय का जो दौर है वो हर चीज़ ही विशेष नज़र आती है कई दृष्टि से
जी।
और उनका जो एक विराट व्यक्तित्व, और ऐसा लगता था कि जैसे एक स्वाभाविकता थी कि हाँ वह तो बड़े व्यक्ति थे, ऐसा कुछ बोध उस समय तो नहीं होता था। बाद में चल के ये समझ में आया कि वो क्या चीज़ थे, तो जैसे लेकिन वो छोटे छोटे विनोदी पक्ष भी थे उनके
जी।
जैसे एक बार जा रहे थे तो कहा कि गाड़ी में बैठे तो हम लोग उनको प्रणाम करने गए तो किसी ने कहा टाटा, तो कहने लगे आज अरे बेटा कभी कभी बिरला भी बोल दिया करो, नहीं तो बिरला नाराज हो जाएगा
बहुत। मतलब हंसी मजाक में उन्होंने जो है रास्ता जो है सही मार्ग जो है वो दिखा दिया। और उनकी कोई ऐसी कविता जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो जिसमें कि राष्ट्रीय धुन जो है वो आती हो?
राष्ट्रीयता से जुड़ी तो उनकी बहुत सी कविताएं हैं, ऐसे उनकी जो विद्रोही और क्रांतिकारी कविताएं हैं
बिल्कुल विद्रोही, वो उन्हीं की वजह से जो है लोगों के अंदर जोश पैदा होता था। उन्होंने कलम को जो है सिपाही की तरह से इस्तेमाल किया था।
जी जी जी। अब जैसे मुझे याद आ रहा है कि वो जनतंत्र का जन्म 1950 में ये कविता लिखी गई
जी,
और उसमें वो बोलते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो या इसकी अंतिम पंक्ति जो है वो ये है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में।
बिल्कुल, खेतों और खलियानों से ही जीवन जो है उस वक्त जुड़ा हुआ था। तो वो अपने शब्दों से जो है अपने मन की बात
जी जी
दुनिया तक पहुंचा सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे, और जीवन की उस वक्त की जो सच्चाई थी, देश पर तंत्र था, तो अपने उससे मन से जो है वो ऐसे ऐसे शब्द निकाल करके ऐसी ऐसी कविताएँ उन्होंने गढ़ी हैं कि लोग जो हैं जोश से सरावार हो जाते थे।
दिल्ली पे 4 कविताएं उनकी हैं
जी,
और वो एक तरह से व्यंग है। एक कविता तो उसकी है, उसकी चंद पंक्तियां हैं, हो गया एक नेता मैं भी तो बंधु सुनो, हो गया एक नेता मैं भी तो बंधु सुनो, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी वित सहता हूँ।
जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी तो एक कवि हैं, एक लेखक हैं, तो हमें बताइए कि आपकी लेखनी जो है वो किस ओर ज़्यादा मुड़ती है?
देखिए ऐसा है कि 1974 में दिनकर जी का निधन हुआ
जी।
और 1975 के लगभग एक सज्जन मेरे घर आए थे, श्री शारदा प्रसाद सैदपुरी नाम था उनका, भागलपुर के थे
जी।
उन्होंने वो आए और उन्होंने कहा कि कादम्बनी के लिए एक लेख लिखिए, और 8-9-10 साल का मैं बालक था
जी।
तो मैंने मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिख सकता हूँ, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए, कुछ दिशा निर्देश दिए कि इस तरह से, तो मैंने एक लेख लिखा खाना कैसे खाऊं।
अच्छा।
और वो जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था और उसमें ये था कि दिनकर जी कभी बाबा आते थे पटना, तो माँ ये चाहती थी कि उनको कुछ अच्छा खाना बना के दें, ताकि फिर बाहर चले जाते हैं तो घर का खाना और अच्छा खाना उनको विविध प्रकार का मिले, और जब वो खाने लगे तो वो कहते थे ये सब क्या व्यंजन बनाती हैं बनाती हो, क्यों इतना व्यंजन और इस तरह से बनाती हो, मेरा ये सब खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये इतने छात्र जो हैं उन पर इतना अत्याचार हो रहा है और मैं घर में ये खाऊं
जी।
तो उसी पे शीर्षक था खाना कैसे खाऊं, और संस्मरण हुए। उसके बाद मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी
जी,
और कहानियाँ मैंने छिटपिट लिखी हैं, 2-4-5 लिखी हैं, और ये नहीं कि नहीं लिख सकता, लेकिन मैं थोड़ा प्रमादी हूँ
जी,
और उस तरह से तत्परता के साथ चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाता,
समय लेते हैं।
और
बिल्कुल
उसी दौरान मैंने कविताएं भी लिखी, तो बाद में मेरी कविता की एक पुस्तक छपी नदी
जी,
और एक अभी जो प्रकाशनाधीन है कविता की किताब, उसका नाम है ठिठक गई बूंदें, ठिठक गई बूंदें
जी। कोई एक अपनी कविता सुनाए?
सुना देता हूँ।
आपका जो है किस ओर मुड़ाव है?
मेरा विविध प्रकार की रचनाएं हैं मेरी
जी,
जैसे आप
कोई ऐसी कविता जो कि आपको बहुत पसंद हो।
अभी याद है नगर वो, अभी याद है डगर वो
जी,
वो तुलसी के बिरवे, वो मिट्टी की खुशबू, वो बादल का घिरना, वो वर्षा का मटमैली माटी की सड़कों पर पड़ते ही मन को छू लेना, वो ताल वो तलैया वो मछली की छपछप वो भौरों का सरगम, नदी का किनारा वो रेतों का ढेर, वो पुल वो नावें अचानक अचानक सांझ के पैर में कांप कांप जाना, वो मौसम सुहाना, नहीं है नहीं है यहाँ कुछ नहीं है, वो गाँव की मस्ती वो अलहड़ फसाना। लंबी कविता है ये।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गांव, आपने पूरे गांव को घुमा दिया है आज। हम जो श्रोता जो हैं वो भी अपने गांव में पहुंच गए और उनको भी मिट्टी की सुगंध जो है वो आने लगी है। नहीं, बहुत सुंदर कविता। वैसे आप किस तरीके से दिनकर जी से प्रभावित हुए? आपने उनके साथ जुड़ करके जो कभी कोई कविता लिखी या उनकी आपकी क्या विशेष यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं?
देखिए, कविताओं में दिनकर जी एक इतने मौलिक कवि हैं कि उनका प्रभाव लेके बहुत कुछ नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, उनके जो शब्द हैं अगर आप उनको ढंग से पढ़ते हैं तो उनके शब्दों का प्रभाव आता है और उनके शब्दों का में जो चीज़ें हैं और वो शब्द आपके अंदर घुमर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन दिनकर जी के तर्ज पे कोई कविता लिखना, अभिधा शैली, वो बहुत कठिन काम है। कोई बहुत मेरे ख्याल से एक आध दो कवि होंगे जो उनके तरह से लिख पाते हों या नहीं लिख पाते हों, मेरी नज़र में कोई आया नहीं।
उतना जोश जो है होना किसी भी कवि में बहुत समय की बात है, आसान नहीं है उस जोश से लिखना जिस जोश से वो लिखा करते थे और लोगों को जो है आगे बढ़ने की सीख दिया करते थे। तो उनकी जो लेखनी है, जो कविताएँ हैं और जो उनका पूरा साहित्य है, उसमें कोई ऐसी चीज़ जिसने कि आपको प्रभावित किया हो?
अब जैसे उनकी बात की जो कुछ रचनाएं हैं, पहले की जो दिनकर जी को सामान्यतः ऊंच के कवि मानते हैं, आग राग और वैराग्य के कवि।
बिल्कुल।
तो आग के कवि तो वो थे ही, तो वो शाम शुरू की रचनाएं हैं। अब मैंने जैसे उनकी जो कुछ मार्मिक पंक्तियाँ ऐसी हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं, जैसे याद रहती है नहीं, जो जिनका असर मेरे ऊपर हुआ
जी।
अब जैसे वो कहते हैं, तुम वृक्ष हो, शैवाल हो
जी,
शिशु हो, तुम कमल हो, वायु जिस पर संचरण करती, तुम बहुत ही प्रांशु हो
जी,
कितना कहूँ और ये बातें जगत की दृष्टि के लिए कुछ भी नहीं।
बहुत खूब, बहुत खूब। आज आपने जो है हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को हमारे सामने, हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, उनकी कविताएं हमें सुनाई, अपने बारे में भी आपने बातचीत की। और श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि फिर कभी जीवन में मौका मिला तो आपके साथ फिर मिलेंगे, आपके साथ अगला कार्यक्रम अवश्य करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
बहुत आभार कल्पना जी, और आप लोगों को नमस्कार। और मैं तो दिल्ली में हूँ अभी, और देख मॉरिशस के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन।
धन्यवाद।
क्षितिज क्षितिज